ओम शांति, ओम शांति। बाबा के प्यार की छत्र छाया में आत्मदीप जगाया है, तो प्यार की छत्र छाया में बाबा हम बच्चों को ज्ञान और योग, धारणा, सेवा, ये चारों विषय सिखाते हैं। पर इस आत्मारूपी दीपक में ज्ञान का ग्रंथ बहुत जरूरी है। योग तो वो योग की लव है जो दिया जलता है, तो ज्ञान और योग ये दोनों आधार है। ज्ञान तो थियरी है और योग प्रैक्टिकल है। ज्ञान का तो विस्तार है और योग तो सेकंड का है। योग के लिए कुछ लंबा चौड़ा विस्तार नहीं बताना होता है। योग माना याद, और याद तो सिखाई थोड़ी जाती है। एक छोटे बच्चे को ही थोड़ी सिखाएंगे कि आप डैडी को, पिताजी को याद करो, वो तो अपने मुख से अपने आप ही रटता है, पिताजी पापा पापा करता रहता है। वो पिता को तो याद करता ही है, सिखाया नहीं जाता है। लेकिन बच्चे को ज्ञान दिया जाता है। तो बाबा कहते हैं योग कोई सिखाने की बात थोड़ी है, ये तो याद है, एक सेकंड का है। लेकिन फिर बाबा कहते हैं ज्ञान में मेहनत नहीं है। ज्ञान तो बुद्धि में सहज आ सकता है। कितना विस्तार करते हैं, ज्ञान की पॉइंट्स सुनाते हैं, भाषण करते हैं, मुरली सुनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन याद का सब्जेक्ट मुख्य है। याद में बच्चे फेल हो जाते हैं, क्योंकि माया याद में ही विघ्न डालती है, ज्ञान में विघ्न नहीं डालती है। तो आज बाबा ने ज्ञान और योग दोनों का कॉन्ट्रास्ट बताया है, क्या अंतर है। योग के लिए भी ज्ञान तो चाहिए, लेकिन योग मुश्किल नहीं है, ज्ञान भी मुश्किल नहीं है। पर मुश्किल योग क्यों लगता है? क्योंकि माया योग में इंटरफेयर करती है, ज्ञान में नहीं करती है। तो क्या अंतर है वो आज बाबा ने बताया। तो सुनते हैं बाबा के माँ वाक्य। आज 3/2/2025 है। मीठे बच्चे, आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालो तो ज्योत जगी रहेगी। ज्ञान और योग का कॉन्ट्रास्ट अच्छी रीति समझना है। प्रश्न है, बाप का कार्य प्रेरणा से नहीं चल सकता है, उन्हें यहां आना ही पड़े, क्यों? प्रेरणा से भगवान ज्ञान नहीं देते हैं, उनको आना पड़े सृष्टि मंच पर। तो क्यों प्रेरणा से ज्ञान नहीं दे सकते, क्यों आना पड़े? उसका उत्तर है, क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान है। तमो प्रधान बुद्धि प्रेरणा को कैच नहीं कर सकती। बाप आते हैं तब तो कहा जाता है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। तो गीत यही बजा है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रहे। तो उसको आना पड़ता है, प्रेरणा से नहीं ज्ञान देगा। तो गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रहे। बाबा ने इस गीत को स्पष्ट किया है। ओम शांति, भक्तों ने यह गीत बनाया है। अब इसका अर्थ कैसा अच्छा है? कहते हैं, आकाश सिंहासन छोड़ कर आओ। अब आकाश तो है ये, दिखाई देते ना आकाश, तो आकाश तो ये पांच तत्वों का एक तत्व है। आकाश तो है ये है रहने का स्थान। हम मनुष्य आत्माएं शरीर धारण कर इस आकाश तत्व के अंदर रहती है। आकाश तत्व में तो तुम रहते हो और बाप रहते हैं मह तत्व में। बाबा इस आकाश तत्व में नहीं रहते, हम आत्माएं शरीर धारण कर इस आकाश तत्व में रहती है। बाप तो रहते हैं मह तत्व में, उसको ब्रह्म या मह तत्व कहेंगे, ब्रह्म मह तत्व, जहां आत्माएं निवास करती है। बाप आएगा भी जरूर वहां से, कहां से आएगा, उस आकाश तत्व से भी पार, सूर्य चांद सितारों के रोशनी से भी पार, ब्रह्म महतत्व से आएगा। कोई तो आएगा ना, इसलिए बुलाते हैं परमात्मा को आओ, कोई तो आएगा ना, कहते हैं आकर हमारी ज्योत जगाओ। गायन भी है, गायन क्या है, ज्योत जगाओ, तो जगाना माना जैसे जागृत करना, तो गायन भी है। एक है अंधे की औलाद अंधे, और दूसरे है सज्जे की औलाद सज्जे। तो कौरव है अंधे की औलाद अंधे, पांडव है सज्जे की औलाद सज्जे, हाँ तो दोनों में अंतर है। धृतराष्ट्र और युधिष्ठर ये नाम दिखाते हैं ना। अभी ये तो है औलाद रावण की, कलयुगी दुनिया में सब रावण की औलाद है, माया रूपी रावण है ना, सबकी रावण बुद्धि है, सबकी रावण बुद्धि है। अब तुम हो ईश्वरीय बुद्धि, तो बाप तुम्हारी बुद्धि का अब ताला खोल रहे हैं, है ना। बाबा की मुरली सुनते जाते हैं, बुद्धि का ताला खुलता जाता है और अज्ञान नींद से जागते जाते हैं। बाप तुम्हारी बुद्धि का ताला खोल रहे हैं और रावण ताला बंद कर देते हैं। कोई किसी बात को नहीं समझते हैं तो कहते हैं ना, ये तो पत्थर बुद्धि है, ये कुछ समझ ही नहीं रहा है इसकी, जैसे बुद्धि को ताला लगा हुआ है, तो ये पत्थर बुद्धि है। तो बाप आकर यहाँ ज्योति जगाएंगे ना। अब प्रेरणा से थोड़ी काम होता है, उनको आना पड़ेगा ज्योति जगाने के लिए, ज्ञान का घृत डालना पड़ेगा, तो प्रेरणा से थोड़ी काम होता है। आत्मा जो सतो प्रधान थी, उनकी ताकत अब कम हो गई है, तमो प्रधान बन गई है, एकदम झुंझार बन पड़ी है। आत्मा की जो ज्योत है एकदम झुंझार, माना जैसे आंखें होती है ना, एक होती है पूरी आंखें खुल जाती है, दूसरी थोड़ी थोड़ी बस बिल्कुल झुंझार, एकदम जैसे पता ही नहीं चलता खुली भी है या बंद है, तो एकदम झुंझार बन पड़ी है। मनुष्य कोई मरते हैं तो उनका दीवा जलाते हैं। अब दीवा क्यों जलाते हैं, क्यों जलाते हैं, बाबा जवाब देते हैं क्यों जलाते हैं, समझते हैं ज्योति बुझ जाने से अंधेरा न हो जाए, बहुत ध्यान रखते हैं वो ज्योति जो डेड बॉडी के आगे रखते हैं, ये बुझनी नहीं चाहिए, इसलिए उसको शीशे के अंदर रखते हैं ताकि जो हवा का झोंका लगे और बुझ न जाए लगने से। तो बाबा कहते हैं समझते ज्योति बुझ जाने से अंधेरा हो जाएगा, आत्मा को रास्ता नहीं दिखाई देगा, इसीलिए यहाँ ज्योति जलाते हैं, अंधेरा न हो जाए इसलिए ज्योति जगाते हैं। अब यहाँ की ज्योति जगाने से वहाँ कैसे रोशनी होगी, अब आत्मा तो पता नहीं कहाँ की कहाँ चली गई, अब यहाँ ज्योति जलाई तो यहाँ की रोशनी उस आत्मा को रोशनी कैसे दे सकती है, और आत्मा तो स्वयं ही ज्योति स्वरूप है, उसको अन्य रोशनी की क्या जरूरत है, परंतु अंधेरे में है तो रोशनी चाहिए, आत्मा भी अभी झुंझार हो गई है, तो यहाँ ज्योति जलाते हैं। तो बाबा कहते हैं अब यहाँ की ज्योति जगाने से वहाँ कैसे रोशनी होगी? कुछ भी समझते नहीं हैं। अभी तुम सेंसिबल बुद्धि बनते हो। बाप कहते हैं, मैं तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ। स्वच्छ बुद्धि, सेंसिबल बुद्धि। किसी ने हमको 100 प्रकार की बुद्धि के ऊपर लिस्ट बना के भेजी, 100 प्रकार की बुद्धि, चाहे नेगेटिव साइड पॉजिटिव साइड 100। तुमने कहा तो बहुत अच्छी चीज है। तो बाप कहते हैं, तो अभी बताया स्वच्छ बुद्धि, सेंसिबल बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, डल बुद्धि, पत्थर बुद्धि, कितनी लिस्ट बन सकती है। तो बाप कहते हैं, मैं तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ, ज्ञान घृत डालता हूँ। है ये भी समझाने की बात, ज्ञान घृत कोई ऐसा घृत नहीं है जो डालेंगे आत्मा की ज्योति में, ये समझने समझाने की बात है। ज्ञान और योग दोनों अलग चीज है। योग को ज्ञान नहीं कहेंगे, ये दो अलग सब्जेक्ट्स है ज्ञान और योग। कोई समझते हैं भगवान ने आकर ये भी ज्ञान दिया ना कि मुझे याद करो, तो मुझे याद करो ये ज्ञान दिया, तो ये योग भी ज्ञान का ही सब्जेक्ट है? नहीं। लेकिन बाबा कहते ज्ञान है थियरी, पर योग तो है प्रैक्टिकल। तो ज्ञान तो दिया पर वो प्रैक्टिकल करना, उसी को योग कहेंगे। तो ज्ञान दिया ना भगवान ने कि मुझे याद करो, परंतु इसे ज्ञान नहीं कहेंगे। अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, ये योग है। इस मन को मेरे में लगाओ, ये योग है। तो परंतु इसे ज्ञान नहीं कहेंगे। ये तो बाप और बच्चे हैं। बच्चे जानते हैं कि ये हमारा बाबा है। इसमें ज्ञान की बात नहीं है, कोई विस्तार ज्ञान का नहीं चाहिए समझने में कि ये हमारा बाबा है, बाप है। ज्ञान तो विस्तार है, ये तो सिर्फ याद है। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो बस। अब ये तो कॉमन बात है, इनको ज्ञान नहीं कहा जाता है। बच्चे ने जन्म लिया सो तो जरूर बाप को याद करेगा ना। ज्ञान तो का तो विस्तार है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, अब ये ज्ञान नहीं हुआ, ये याद है, ये योग है। तुम खुद जानते हो हम आत्मा हैं, हमारा बाप परम आत्मा है, परमात्मा है। इसे ज्ञान कहेंगे क्या? ये तो योग है। बाप को पुकारते हैं, ज्ञान तो है नॉलेज। जैसे कोई एमए पढ़ते हैं, कोई बीए पढ़ते हैं, कितनी ढेर किताबें पढ़नी होती है। अब बाप तो कहते तुम हमारे बच्चे हो ना। किताबें अलग चीज है, वो तो बहुत विस्तार है, पर टीचर को याद करना, इसमें ज्ञान क्या चाहिए? तो ज्ञान की टॉपिक अलग है, विषय अलग है, योग की टॉपिक अलग है। अब बाप तो कहते तुम हमारे बच्चे हो ना, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तो मेरे से ही योग लगाओ, अर्थात याद करो। इसको ज्ञान नहीं कहेंगे। मन को मेरे में लगाओ, मुझे याद करो, ये योग का टॉपिक है, ये ज्ञान नहीं है। तुम बच्चे तो हो ही, तुम आत्माएं कब विनाश को नहीं पाती हो? कोई मर जाते हैं तो उनकी आत्मा को बुलाते हैं। अब वो शरीर तो खत्म हो गया, आत्मा भोजन कैसे खाएगी? भोजन तो फिर भी ब्राह्मण खाएंगे, है ना? भोजन तो ब्राह्मण को खिलाते हैं, वे आत्मा का जैसे श्राद्ध है तो ब्राह्मण को बुलाते हैं, वो श्राद्ध खिलाते हैं ब्राह्मण को। अब आत्मा तो नहीं खाती, वैसे भी शरीर में जाता है। भोजन तो फिर भी ब्राह्मण खाएंगे, परंतु ये सब है भक्ति मार्ग की रसम। ये भी स्नेह है, वो उस आत्मा के प्रति स्नेह जताते हैं कि हम उसको भोजन खिलाते हैं। तो वासना तो हो सकता, आत्मा तो लेती होगी ना, जरूर याद किया उनको, तो उनकी भी याद आती है, तो हमारी भी याद उनको पहुंचती है। परंतु ये सब है भक्ति मार्ग की रसम। ऐसे नहीं कि हमारे कहने से वो भक्ति मार्ग बंद हो जाएगा। भक्ति मार्ग तो बंद नहीं होगा, जो रस में चल रही है वो तो चली रही है, वो तो चलता ही आता है। आत्मा तो एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेती है। बच्चों की बुद्धि में ज्ञान और योग का कॉन्ट्रास्ट स्पष्ट होना चाहिए। बाप जो कहते हैं मुझे याद करो, ये ज्ञान नहीं है, ये क्या है? योग है। ये तो बाप डायरेक्शन देते हैं, इनको योग कहा जाता है। बाबा डायरेक्शन देते हैं मुझे याद करो, तो ये योग है। ज्ञान तो बहुत विस्तार है, तीनों कालों का ज्ञान, तीनों लोकों का ज्ञान, 84 जन्मों का ज्ञान, वो ज्ञान है विस्तार। ज्ञान है सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इसकी नॉलेज। योग अर्थात याद। तो बच्चों का फर्ज है बाप को याद करना। ये तो बाबा याद दिलाते कि तुम्हारा फर्ज है मुझे याद करना। यहाँ बाप की याद दिलानी पड़ती है। लौकिक में बच्चे को बाप की याद दिलानी नहीं पड़ती है, वो तो फर्ज है और वो फर्ज निभाता है। बार बार सारा दिन पप्पा 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 मम्मा मम्मा मामा करता रहता है, तो याद तो उस बच्चे को है, परंतु यहाँ याद दिलानी पड़ती है। शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा याद है, ये कहना पड़ता है। यहाँ बाप की याद दिलानी पड़ती है, इसमें मेहनत लगती है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, ये बहुत मेहनत का काम लगता है। है मेहनत क्या? सहज नहीं है। क्यों बाबा कहते मेहनत का काम लगता है? हा? क्योंकि माया आती है। तब बाबा कहते हैं योग में ठहर नहीं सकते हैं। बच्चे लिखते हैं बाबा याद भूल जाती है। ऐसे नहीं कहते ज्ञान भूल जाता है, ऐसे नहीं कहते ज्ञान भूल जाता है। ज्ञान नहीं भूलता है, वो तो है बुद्धि में, परंतु योग याद भूल जाती है। ऐसे नहीं कहते ज्ञान भूल जाता है, ज्ञान तो बहुत सहज है। याद को ज्ञान नहीं कहा जाता है। हाँ, याद में माया के तूफान बहुत आते हैं। भल ज्ञान में कोई बहुत तीखे हैं, मुरली बहुत अच्छी चलाते हैं, परंतु बाबा पूछते हैं याद का चार्ट निकालो, कितना समय याद करते हो। बाबा को याद का चार्ट यथार्थ रीति बनाकर दिखाओ। याद की ही मुख्य बात है। पतित ही पुकारते हैं कि आकर के पावन बनाओ, तो मुख्य है पावन बनने की बात। तो पावन कैसे बनेंगे? याद से ही पावन बनेंगे। तो मुख्य है पावन बनने की बात। अब इसमें ही माया के विघ्न पड़ते हैं। बाबा को याद करने बैठते हैं तो देहधारी याद आ जाते हैं, कोई चीज याद आ जाती है, कोई स्थान याद आ जाता है। कितना मन भटकता रहता है, तो फिर विकर्म विनाश कैसे होंगे? नहीं होते हैं। बाबा कहते हैं इसमें ही माया के विघ्न पड़ते हैं। शिव भगवान वाच याद में सब बहुत कच्चे हैं। देखो बाबा ने क्या सर्टिफिकेट दिया। शिव भगवान वाच, शिव भगवान कहते हैं याद में सब बहुत कच्चे हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जो मुरली तो बहुत अच्छी चलाते हैं, परंतु याद में बिल्कुल कमजोर है। योग से ही विकर्म विनाश होते हैं, योग से ही कर्म इंद्रियां बिल्कुल शांत हो जाती है। ज्ञान से विकर्म विनाश नहीं होंगे, भले कितना भी विचार सागर मंथन करो। चलो योग की का वो पहला कदम है, बुद्धि को स्वच्छ बनाएगा, मन के संकल्पों को स्वच्छ बनाएगा विचार सागर मंथन, लेकिन याद तो बाबा को करना, ये तो बहुत ऊंची बात है। तो बाबा कहते हैं योग से ही विकर्म विनाश होते हैं, योग से ही कर्म इंद्रियां बिल्कुल शांत हो जाती है। ज्ञान से कर्म इंद्रियां शांत तो ये जरूरी नहीं है, वो तो दिमाग चलता ही रहता है, लेकिन योग से अशरीरी बन जाते हैं, देही अभिमानी बनते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर तो कर्म इंद्रियां बिल्कुल शांत हो जाती है। एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए, कोई देह भी याद न आए। चलो औरों की देह नहीं याद आए, परंतु अपनी देह भी याद न आए। आत्मा जानती है ये सारी दुनिया खलास होनी है, अब हम जाते हैं अपने घर। याद की सब्जेक्ट में ये हम सोचते हैं क्या, ये सब शरीर खत्म होने हैं, अब हम जाते हैं अपने घर। फिर आएंगे राजधानी में, ये सदैव बुद्धि में रहना चाहिए। राजधानी में आएंगे ये तो याद में आए, याद रहे ना, तो बाबा कहते कल भी बताया ना, वो खूंटी पर कपड़े टांगते ना खूंटी पर, तो हमारा सत्युगी चोला खूंटी पर टंगा हुआ है, और कैसे ये चोला उतारेंगे और वो चोला पहनेंगे। तो बाबा कहते हैं अब हम जाते हैं अपने घर, फिर आएंगे राजधानी में, ये सदैव बुद्धि में रहना चाहिए। ज्ञान जो मिलता है वो आत्मा में रहना चाहिए। बाप तो है योगेश्वर जो याद सिखलाते हैं। वास्तव में ईश्वर को योगेश्वर नहीं कहेंगे। एक तरफ बाबा कहते हैं वो योगेश्वर है, फिर बाबा कहते हैं योगेश्वर ईश्वर को नहीं कहेंगे, क्योंकि दो अर्थ है। एक है योगेश्वर का मतलब योग सिखाने वाला ईश्वर, और दूसरा योगेश्वर माना ईश्वर से योग लगाने वाला। तो ईश्वर से योग लगाने वाला हो गया तो योगेश्वर, और ईश्वर योग सिखाता है, इसीलिए शिव बाबा को भी योगेश्वर कहते हैं। ईश्वर बाप कहते हैं मुझे याद करो, ये याद सिखलाने वाला ईश्वर बाप है। वो निराकार बाप शरीर द्वारा सुनाते हैं, बच्चे भी शरीर द्वारा सुनते हैं। कई तो योग में बहुत कच्चे हैं, बिल्कुल याद करते ही नहीं हैं। जो भी जन्म जन्मांतर के पाप हैं सब की सजा खाएंगे। वार्निंग देते हैं बाबा कि अगर नहीं याद में रहेंगे तो बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं सब की सजा खाएंगे। यहाँ आकर जो पाप करते हैं वो तो और ही 100 गुना सजा खाएंगे। बाबा का बनने के बाद, बाबा की पहचान मिलने के बाद, इतना ज्ञान समझने के बाद फिर भी कोई न कोई विकर्म करते हैं तो बाबा कहते 100 गुना सजा खाएंगे। ज्ञान की टिक टिक तो बहुत करते हैं, योग बिल्कुल ही नहीं, जिस कारण पाप भस्म नहीं होते हैं, कच्चे ही रह जाते हैं। इसलिए सच्ची सच्ची माला तो 8 की ही बनती है, बिल्कुल पास विथ ऑनर्स होते हैं, जरा भी खाद नहीं, आत्मा सच्चा हीरा सच्चा सोना बन जाती है। वो बाबा कहते एकदम वो सच्चा सोना सच्चा हीरा, वो तो बाबा कहते 8 ही बनते हैं। इसलिए सच्ची सच्ची माला 8 की बनी है। 9 रत्न गाए जाते हैं, 108 रत्न कब सुने हैं क्या? 108 की माला है वो, मण के सब नंबर वार है, लेकिन जो 8 है वो तो संपूर्ण है। इसीलिए अंगूठी भी 9 रत्नों की बनाते हैं शिव बाबा बीच में, और अष्ट रत्न। तो 108 रत्न कब सुने हैं क्या? 108 रत्नों की तो कोई चीज नहीं बनाते हैं, माला बनाते हैं, लेकिन 108 चीजों का या उनके इतने रत्नों का अंगूठी कोई बने वो तो नहीं बनाते हैं। बहुत है जो इन बातों को पूरा समझते नहीं है। याद को ज्ञान नहीं कहा जाता है, याद को ज्ञान नहीं कहा जाता है, ज्ञान तो सृष्टि चक्र को कहा जाता है। शास्त्रों में ज्ञान नहीं है, क्या है शास्त्रों में? वो शास्त्र है भक्ति मार्ग के, उसमें है भक्ति कर्म कांड, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान तो भगवान ही आकर देते हैं जिससे आत्मा की सदगति होती है। वो शास्त्र है भक्ति मार्ग के। बाप खुद कहते हैं मैं इनसे नहीं मिलता हूँ, साधुओं आदि का सबका उद्धार करने मैं आता हूँ। ऐसे नहीं शास्त्र पढ़ेंगे कंठस्थ करेंगे उच्चारण करेंगे तो वापस चले जाएंगे मुक्ति में, नहीं, सबका उद्धार करने मुझे ही आना पड़ता है। वो समझते हैं ब्रह्म में लीन होना है, फिर मिसाल देते हैं, कौन सा मिसाल देते हैं ब्रह्म में लीन होने का, क्या मिसाल देते हैं कि पानी के बुदबुदे का ये मिसाल देते हैं, आत्मा बुदबुदा है, वो सागर से निकली है, फिर सागर में मिल जाएगी, वो बुदबुदा उसमें समा जाएगा, ये मिसाल देते हैं आत्मा परमात्मा में कैसे लीन हो जाती है। तो बाबा कहते हैं फिर मिसाल देते हैं पानी के बुदबुदे का, अभी तुम ऐसे तो नहीं कहते हो, हम ऐसे नहीं कहते कि आत्मा बुदबुदा है और परमात्मा सागर है, वो बूंद फिर सागर में मिलेगी, क्योंकि आत्मा तो मिल नहीं सकती, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, तो मिलेगी कैसे। फिर बाबा ने जैसे कहा ना उस दिन लव है तो लवलीन रहते हैं, उन्होंने लवलीन शब्द नहीं देखा और अर्थ क्या ले लिया कि आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, तो लवलीन इसमें आधा इंग्लिश शब्द है लव और लीन, तो विलीन ये हिंदी शब्द हो गया, तो विलीन नहीं होती है पर लवलीन जरूर होती है। तो बाबा कहते हैं फिर मिसाल देते हैं पानी के बुदबुदे का, अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं आत्मा परमात्मा में जाके मिल जाऊंगी, विलीन हो जाऊंगी, अभी ऐसे नहीं कहते हम। हाँ, वो तो कोई भी सन्यासी शरीर छोड़ेगा क्या कहते हैं, ब्रह्मलीन हो गया, जैसे नहीं कहते स्वर्ग पधारा, स्वर्ग नहीं कहते सन्यासियों के लिए, ब्रह्मलीन हो गया। तो अभी तुम ऐसे नहीं कहते हो, तुम तो जानते हो हम आत्माएं बाप के बच्चे हैं, माँ एकम याद करो, ये अक्षर भी कहते हैं गीता में है, माँ एकम याद करो, ये अक्षर भी कहते हैं लोग जब गीता सुनाते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। माँ एकम किसने कहा, मन को मेरे में लगाओ, ये किसने कहा, वो कृष्ण को समझ लेते हैं, भल कह देते हैं हम आत्माएं, ये भी कहते हैं, परंतु आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये ज्ञान बिल्कुल नहीं, ये बाप ही आकर के सुनाते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्माओं का घर वो है, वो सारा वहां सारा सिजरा है, आत्माओं का सिजरा है परमधाम में, पूरा झाड़ है आत्माओं का, हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, सबको पार्ट अपना अपना है और अपने अपने सेक्शन में जाकर के विराजमान हो जाती है आत्मा, सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, सुख कौन देते हैं दुख कौन देते हैं ये भी किसको पता नहीं है, सब वो समझते सुख दुख दोनों ही भगवान देता है, लेकिन बाबा कहते नहीं, मैं तो दुख नहीं देता हूँ, मैं तो दुख हरता सुख करता हूँ, दुख तो रावण देता है, इसलिए उसका एफिजी बन के जल बना के जलाते हैं, तो ये भी किसको पता नहीं है। भक्ति है रात ज्ञान है दिन, 63 जन्म तुम धक्के खाते हो, फिर ज्ञान देता हूँ तो कितना समय लगता है, ज्ञान जब बाबा देते तो कितना समय लगता है बाबा को ज्ञान देने में, सेकंड में ज्ञान दे देते हैं, समझ आ गई तुम आत्मा हो, शिव बाबा को याद करना है सेकंड में, ये तो गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति, ये तुम्हारा बाप है ना, बाकी पतित पावन है उनको याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ये तो चक्र है, ये तो नाम भी जानते हैं, हाँ सब सुनाते आज सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, तो ये तो सुनाते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है, ये नाम भी जानते हैं, परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं जो टाइम का किसको पता नहीं है, चार युग तो बताते हैं लेकिन कितना समय कितनी अवधि है एक एक युग की वो बाबा कहते नहीं जानते। सतयुग के लिए क्या कहते, 4,32,000, फिर त्रेता के लिए 8,64,000 और डबल हो गया वो, फिर ये फिर इसके बाद त्रेत द्वापर के लिए कहेंगे हाँ फिर और 4,32,000, फिर कलयुग को तो और बढ़ा दिया और 4,32,000 जोड़ दो, तो सतयुग को सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा त्रेता, उससे बड़ा द्वापर, फिर उससे बड़ा कलयुग, समझ लिया। तो बाबा कहते हैं टाइम का भी टाइम भी नहीं पता उनको। तो बाबा कहते हैं सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग ये चक्र है, नाम भी जानते हैं हम, परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे है टाइम का किसको पता नहीं है। हम समझते भी हैं घोर कलयुग है। अगर कलयुग अभी भी चलेगा 40,000 साल ही केवल हुए, या कोई समझते 5,000 साल है, 40,000 साल और भी कितना चलेगा, अभी कलयुग अभी बहुत चलेगा, तो और घोर अंधेरे में हो जाएंगे। इसीलिए गाया जाता है अभी तो बहुत कलयुग के अंत में तो बहुत समय है, तो सो जाओ ज्ञान की नींद में। इसीलिए गाया हुआ है कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे और विनाश हो गया। विनाश हो गया कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे। अभी भी वहाँ कुंभ मेले में सबसे ज्यादा आकर्षण जो हमारे मेले में है वो कुंभकर्ण का चित्र है। हाँ, खड़े हो जाते अभी कुंभकर्ण जागेगा, अभी जागेगा और एकदम जैसे जागने लगता है तो सब इतने खुश हो जाते कुंभकर्ण जाग गया। खास खड़े होते हैं कैसे, क्योंकि कमेंट्री तो चलती रहती है, तो उसका बहुत आकर्षण है कुंभ मेले में। तो बाबा कहते हैं कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे और विनाश हो गया। थोड़ा भी ज्ञान सुनते हैं तो प्रजा बन जाते हैं। कहाँ ये लक्ष्मी नारायण और कहाँ प्रजा, तो क्या बनना है? हाँ, लक्ष्मी नारायण बनना है या प्रजा बनना है, कितना अंतर है दोनों में। पढ़ाने वाला तो एक ही है, हर एक को अपनी हर एक की अपनी अपनी तकदीर है। कोई तो स्कॉलरशिप ले लेते हैं, कोई फिर फेल हो जाते हैं। राम को बाण की निशानी क्यों दी है, क्यों दिए राम को बाण की निशानी? क्योंकि नापास हुआ, लड़ते हाँ शरीर छोड़ दिया, तो हाथ में तीर कमान उसके हाथ में था और तीर चला ही रहा था, माया को से युद्ध चली रही थी और शरीर छोड़ दिया, पूरा भी पूरे विकर्म विनाश नहीं हुए। तो बाबा कहते क्योंकि नापास हुआ। ये भी गीता पाठशाला है, भगवान गीता का ज्ञान सुनाते हैं, गीता पाठशाला है। कोई तो कुछ भी मार्क्स लेने लायक नहीं है इस पढ़ाई में, कोई तो ऐसे हैं जो कुछ भी मार्क्स लेने लायक नहीं है। मैं आत्मा बिंदी हूँ, बाप भी बिंदी हूँ, बिंदी है, ऐसे उनको याद करना है। हाँ, ये इस बात को समझते भी नहीं है, समझते ही नहीं है तो नापास हो जाएंगे ना। मैं आत्मा बिंदु, शिव बाबा बिंदु, मुझे आत्मा समझकर परमात्मा बिंदु को याद करना है, ये समझते ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं फिर वो क्या पद पाएंगे? याद में न रहने से बहुत घाटा पड़ जाता है। याद का बल बहुत कमाल करता है, अगर बाबा की याद हो ना तो कमाल कर दे। आजकल तो बाबा मनसा सेवा की बात कर रहे हैं, ये याद की कमाल है ना, कैसे सकाश पहुंचती है, उस आत्मा को टचिंग होती है, कैसे उसमें परिवर्तन आता है, क्योंकि सब संकल्पों का खेल है। हमारे संकल्प श्रेष्ठ है तो उनके भी संकल्प श्रेष्ठ होंगे। तो बाबा कहते हैं अगर ये बात नहीं समझते वो पद क्या पाएंगे? याद में न रहने से बहुत घाटा पड़ जाता है। जो इस बात को समझते भी नहीं, याद का बल बहुत कमाल करता है। कर्म इंद्रियां, हाँ क्या कमाल करता है याद का बल, कर्म इंद्रियां बिल्कुल शांत शीतल हो जाती है। तो अगर शांत शीतल हो रही है समझो ये याद का कमाल हो रहा है। कई कहते हैं ना कैसे पता चले कि हम याद में है या नहीं है, कैसे पता चले या उसका क्या मीटर है? तो बाबा बताते हैं कि कर्म इंद्रियां बिल्कुल शांत हो जाती है, शीतल हो जाती है, ये समझो कि योग आपका अच्छा लगा है। कई तो बस एक घंटा बैठे योग में बैठे, चलो उस समय शांत बैठे, और जैसे ही उठे आवाज जोर से करना शुरू किया। वास्तव में जब चलो योग से उठे तो धीरे से आवाज हो ना, इतना जोर से आवाज किया तो योग क्या लगा? कर्म इंद्रियां तो शांत हुई नहीं, शीतल भी नहीं हुई। तो बाबा कहते कर्म इंद्रियां तो बिल्कुल शांत शीतल हो जानी चाहिए। ज्ञान से शांत नहीं होगी। केवल ज्ञान का स्मरण किया मन में, चलो ज्ञान का चिंतन किया, तो कर्म इंद्रिया शांत नहीं होगी, योग के बल से शांत होगी। भारतवासी पुकारते हैं कि आकर हमको वो गीता का ज्ञान सुनाओ, इस गीत में है, फिर से आ जाओ और आकर के गीता का ज्ञान सुनाओ। तो गीत के अंदर शब्द है ये, आकर हमको गीता का ज्ञान सुनाओ। अब कौन आएगा, तो कौन आएगा गीता का ज्ञान सुनाने? श्री कृष्ण की आत्मा तो यहाँ ही है, श्री कृष्ण की आत्मा को तो आने की बात ही नहीं, तो यहाँ ही है। ब्रह्मा तन से ही तो बाबा मुरली चलाते हैं, तो श्री कृष्ण की आत्मा वही सो ब्रह्मा की आत्मा, वो तो यहाँ ही है। कोई सिंहासन पर थोड़ी बैठते हैं, भगवान कोई सिंहासन पर बैठते हैं, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, तो सिंहासन पर बैठे हैं भगवान और वो आ जाएगा धरती पर, ऐसे तो नहीं है। जिसको बुलाते हैं, हाँ, कोई सिंहासन पर नहीं बैठा है, जिसको बुलाते हैं। अगर कोई कहे, बाबा एक मिसाल देते हैं, जैसे क्रिश्चियन धर्म में कई मानते हैं ना, क्राइस्ट अभी फिर से आएगा और आकर के सबका उद्धार करेगा। तो अगर कोई कहे हम क्राइस्ट की आत्मा को याद करते हैं, क्रिश्चियन तो यही कहेंगे ना, हम क्राइस्ट की आत्मा को याद करते हैं, तो बाबा कहते अरे वो तो यहाँ ही है, वो भी यहाँ ही है। तुम कृष्ण को याद करो तो वो आत्मा भी अभी यहाँ ही है, क्राइस्ट को याद करते हो वो भी अभी यहाँ ही है, किसी न किसी नाम रूप में है, तो वो तो यहाँ ही है। ऐसे नहीं कि वो आत्मा परम धाम चली गई, क्योंकि हर धर्म की जो आत्मा है या जिसने धर्म स्थापन किया, अपने धर्म की पालना करने के लिए उसको यहाँ ही रहना पड़ता है, वापस थोड़ी जाएगी। फिर उसके धर्म की पालना कौन करेगा? जो माँ बाप बनते हैं वही फिर बच्चों की पालना करते हैं ना। इसलिए लक्ष्मी नारायण की आत्मा भी 84 जन्मों के अंत में यहाँ ही है, तभी तो सत्युग त्रेता में देखो पालना की ना, इसलिए विष्णु को पालनहार कहते हैं। और फिर देखो द्वापर युग से तो कर्म फल ये अलग हिसाब हो गया, सत्युग त्रेता में कर्म फल का हिसाब नहीं है, वहां तो अकर्मी है। तो कर्म और फल, पाप और पुण्य, ये दोनों द्वापर युग से शुरू होते हैं। सत्युग में न पाप कर्म है न पुण्य कर्म है, वहां तो अकर्म है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं फिर हरेक का अपने कर्मों का हिसाब किताब है। फिर कलयुग अंत में फिर माता पिता मिलते हैं, फिर बच्चों का उद्धार करते हैं और फिर बच्चे स्वर्ग के मालिक बनते हैं। कितना सिंपल है। तो क्राइस्ट की आत्मा को भी यही होना होगा, तभी तो अपने धर्म की पालना करेंगे। तो बाबा ने एक बार बताया था, वो आत्मा भी पवित्र आत्मा होगी जरूर, बिशप के रूप में या पोप के रूप में अपने धर्म की पालना कर रही है। तो बाबा कहते हैं वो सब, हाँ, तो वापस तो जा नहीं सकती क्राइस्ट की आत्मा भी। लक्ष्मी नारायण पहले नंबर वाले को ही पूरे 84 जन्म लेने हैं, तो और फिर वापस कैसे जा सकते हैं? और धर्मों की आत्माएं कैसे वापस जा सकती है? वो सब हिसाब है ना। मनुष्य तो जो कुछ बोलते हैं सो झूठ, आधा कल्प है झूठ खंड, आधा कल्प है सच खंड। अभी तो हर एक को समझाना चाहिए, इस समय सब नरकवासी हैं, फिर स्वर्गवासी भी भारतवासी ही बनते हैं। मनुष्य कितने वेद शास्त्र उपनिषद आदि पढ़ते हैं, क्या इससे मुक्ति को पाएंगे? उतरना तो है ही है, ये तो सब द्वापर से चलो ये शास्त्र वे जो भी बनते आए हैं, पर उतरना तो है ही। हर चीज सतो रजो तमो में जरूर आती है। न्यू वर्ल्ड किसको कहा जाता है? किसको भी ये ज्ञान नहीं है। ये तो बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं, देवी देवता धर्म कब और किसने स्थापन किया ये भारतवासियों को कुछ भी पता नहीं है। तो बाप ने समझाया है, ज्ञान में भल कितने भी अच्छे हैं, परंतु योग में कई बच्चे नापास हैं। फिर योग नहीं तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, ऊंच पद नहीं पाएंगे। जो योग में मस्त है वही ऊंच पद पाएंगे। उनकी कर्म इंद्रियां बिल्कुल शीतल हो जाएगी। देह सहित सब कुछ भूल देही अभिमानी वो बन जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे, देही अभिमानी बन जाएंगे, अशरीरी बन जाएंगे। हम अशरीरी है अब घर जाते हैं, बस यही बुद्धि में रहेगा। तो उठते बैठते समझो अब ये शरीर तो छोड़ना है, हमने पाठ बजाया अब जाते हैं घर। ये शरीर छोड़ना है, हमने पाठ बजाया अब जाते हैं घर। ज्ञान तो मिला है, जैसे बाप में ज्ञान है उनको तो किसको याद नहीं करना है। शिव बाबा में इस ज्ञान है लेकिन शिव बाबा को किसको योग याद तो करना नहीं है, तो इसलिए याद तो करना नहीं है, इसीलिए भगवान को किसी को याद नहीं करना है। जो विकर्म विनाश भगवान का, भगवान तो विकर्म करते ही नहीं है, याद तो हमको करना है ना, ताकि हमारे विकर्म विनाश हो। तो बाबा कहते हैं ज्ञान तो मिला है, जैसे बाप में ज्ञान है उनको तो किसको याद नहीं करना है, याद तो तुम बच्चों को करना है। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है, योग का सागर तो नहीं कहेंगे ना, भगवान में ज्ञान है पर योग का सागर नहीं कहेंगे, परमात्मा को योग लगाने की जरूरत नहीं है, योग का सागर तो नहीं कहेंगे ना। चक्र की नॉलेज सुनाते हैं और अपना भी परिचय देते हैं, चक्र की नॉलेज सुनाते अपना परिचय भी देते हैं। याद को ज्ञान नहीं कहा जाता, ये सब अलग अलग सब्जेक्ट्स है, ज्ञान योग धारणा सेवा चारों अलग अलग सब्जेक्ट्स है। याद को ज्ञान नहीं कहा जाता है, याद तो बच्चे बाप को आपे याद करते हैं, आपे याद आ जाती है, तो याद तो बच्चे को आपे आ जाती है, याद तो करना ही है, नहीं तो वर्षा कैसे मिलेगा। अगर पिता को बच्चा याद न करे, संबंध नहीं रखे, कनेक्शन तोड़ दे, तो पिता से बच्चे को वर्षा कैसे मिलेगा, इसलिए याद तो करना पड़ता है पिता को, तब वर्षा मिलेगा। तो बाप है तो वर्षा जरूर मिलता है। कई ऐसे होते ना जिनके पास बच्चे बहुत है जिनके, लेकिन उनके पास धन नहीं है, तो उनका बड़ा दुख होता है, मैं बच्चों को क्या दूं, बच्चों को कुछ वर्षा तो देना चाहिए पर क्या दूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं। और कईयों के पास बहुत धन है पर बच्चे नहीं है, तो भी उनको दुख होता है, इतना मेरे पास धन है पर किसको दूं, फिर वो ढूंढते रहते किसको दूं, क्या किसको एडॉप्ट करूं, तब तक लूं फिर तब उनको दूं। तो इसीलिए उनको भी दुख, उनको भी दुख, धन नहीं है तो भी दुख, धन है तो भी दुख। तो बाबा कहते हैं तो इसलिए अगर पिता है बच्चे हैं तो फिर बच्चों का फर्ज है पिता को याद करना, तभी तो उनसे वर्षा मिलेगा, नहीं तो वर्षा कैसे मिलेगा। पिता से अगर संबंध ही तोड़ दे बच्चा, मान लो है पर तोड़ देता है संबंध, तो पिता क्यों देगा उसको वर्षा। तो बाबा कहते नहीं तो वर्षा कैसे मिलेगा, बाप है तो वर्षा जरूर मिलता है। बाकी है नॉलेज, हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान, फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बनते हैं, ये बाप समझाते हैं। तो अभी सतो प्रधान बनना है बाप की याद से, तुम रूहानी बच्चे रूहानी बाप के पास आए हो, अब उनको तो शरीर का आधार चाहिए ना, कैसे मिलेंगे बाप से, तुम शरीरधारी और वह शरीरी, तो शरीर का आधार चाहिए उनको। कहते हैं मैं बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, है भी वानप्रस्थ अवस्था, ऐसे नहीं जवान के तन में आऊंगा या बच्चे के तन में आऊंगा, वानप्रस्थ अवस्था में मैं आता हूँ। अब बाप आते हैं तब सारे सृष्टि का कल्याण होता है, ये है भाग्यशाली रथ, इनसे कितनी सर्विस होती है, भागीरथ हाँ, तो वास्तव में कहेंगे भाग्यशाली रथ, कितनी सर्विस होती है। तो इस शरीर का भान छोड़ने के लिए याद चाहिए, इसमें ज्ञान की बात नहीं है, जास्ती याद सिखलानी है, ज्ञान तो सहज है, इसलिए कल भी बाबा ने कहा ना, परसों भी अनुभवी मुहूर्त चाहिए। तो अनुभव तो याद से होगी ना, अनुभव याद से मिलेगा, परंतु ज्ञान तो फिर विस्तार हो जाता है। तो अनुभव कराना है तो योग जरूर कराना है। तो बाबा कहते हैं एक की याद रहे, हाँ जास्ती याद तो सिखला, जास्ती याद सिखलानी है। ज्ञान तो सहज है, छोटा बच्चा भी सुना दे, बाकी याद में ही मेहनत है। एक की याद रहे इसको कहा जाता है, एक की याद को क्या कहा जाता है, अव्यभिचारी याद। किसके शरीर को याद करना, अनेकों की याद हो गई तो उसको कहा जाता है व्यभिचारी याद। याद से सबको भूल अशरीरी बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, याद के बल से अपनी कर्म इंद्रियों को शीतल शांत बनाना है। याद के बल से अपनी कर्म इंद्रियों को शीतल शांत बनाना है। फुल पास होने के लिए यथार्थ रीति बाप को याद कर पावन बनना है। फुल पास होना है तो यथार्थ रीति याद कर बाप को पावन बनना है। दूसरा, उठते बैठते बुद्धि में रहे कि अभी हम ये पुराना शरीर छोड़ वापस घर जाएंगे। जैसे बाप में सब ज्ञान है, ऐसे मास्टर ज्ञान का सागर बनना है। वरदान, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। तो कंबाइंड कैसे रहेंगे, संगम युग पर शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से, हाँ मेरे साथ शिव है, मैं शक्ति हूँ, इस कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। यही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। इस स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भव का वरदान मिल जाता है। बाप दादा सभी बच्चों को सदा सुखदायी स्थिति की सीट देते हैं, सुखदायी स्थिति की सीट देते हैं बाप सब बच्चों को। सदा इसी सीट पर सेट रहो तो अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। सिर्फ विस्मृति के संस्कार समाप्त करो, विस्मृति के संस्कार समाप्त करो, स्मृति के संस्कार लाओ। हाँ, जिसको दादी जानकी नशे से कहती है, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना, ये स्मृति के संस्कार लाओ। सिर्फ विस्मृति के संस्कार समाप्त करो और स्मृति के अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते रहो। स्लोगन, पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ, योग्य भी और योगी भी। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ, उसके लिए विस्तार है। एक मत का वातावरण तब बनेगा, कब बनेगा एक मत का वातावरण, जब समाने की शक्ति होगी। अब सबको बताएंगे, कोई भी किसने कोई भूल की सबको बताते रहेंगे, ये कुछ हुआ बताते रहेंगे, तो बाबा कहते समाने की शक्ति है ही नहीं, तो एक मत का वातावरण कैसे बनेगा। तो एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। तो भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता से समीप आएंगे और सर्व के आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। बाबा ने एक बार कहा था ना, सुई धागे का काम करो, कैंची का काम मत करो। कैंची क्या करती है, एक को दो कर देती है, और सुई धागा क्या करता है, दो को एक करता है। तो एकता तब होगी जब दो को एक करेंगे। अब एक है उसको दो कर दो, इसकी बात ग्लानी उसको, उसकी ग्लानी उसको, तो एक से दो हो जाएंगे। तो ये काम किया तो फिर बाबा कहते धूती बना हो गया ना, तो फिर एकता कैसे आएगी। तो एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। तो भिन्नता को समाओ तब आपस में एकता से समीप आएंगे और सर्व के आगे दृष्टांत रूप बन जाएंगे। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते भी एक। ये ब्राह्मण परिवार की विशेषता, अनेक होते भी एक। ये एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म एक राज्य की स्थापना करेगा। इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाकर एकता लानी है। बाबा कहते तो विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाकर एकता लानी है। अच्छा, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। चलो बाबा की याद में बैठेंगे, उसके बाद डबल विदेशियों को आज का प्रोग्राम सुनाएंगे।